नेमिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि चैत्यमखिलम् सुखिसुधा सचैत्यमखिलम् चैत्यालयम् श्यालयम् रोक्तम् चात्रिविधम् चतुर्विधममी कुर्वन्तु मे मङ्गलम् नाभेयादिविना प्रशस्तवदना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रथितास्ति षष्टिपुरुषा कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ये सर्वौषधिरिद्धयः सुतपसाम् दद्यं गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला चाष्टौ वियच्चारिणः पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तरभावनामरगृहे नीरौ कुलाद्रौ स्थिता जम्बूषाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादृशु विश्वाकारगिनौ गिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कैलाशे वृषभस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपतेः संवेदशैलेर्हताम् शेषानामपि चोर्जयन्तशिखरे नमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु मे मङ्गलम् यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम् जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभा या कैवल्यपुरा प्रवेशमहिमा सम्पादिता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदम् सौभाग्यसम्पत्करम् कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियः तीर्थङ्कराणामुसः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि इस मंगलाष्टक में अपन सभी से अपने मंगल की कामना कर रहे हैं, अपने पापों का क्षय करने और कल्याण करने के लिए ये सब हमारे लिए निमित्त हैं। सबसे पहले हमने पांचों परमेश्वरियों को अपने मंगल में निमित्त बनाया, फिर कह रहे हैं कि नौ देवता भी अर्थात पांच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन वाणी और जिनालय और जिन बिंब, ये नौ देवता भी हमारे कल्याण में निमित्त बने। और चौबीसों तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान को आदि लेकर के महावीर पर्यंत और भरत चक्रवर्ती आदि बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण और नौ ही बलभद्र, ऐसे सब जितने भी तीनों कालों में त्रेसठ शलाका पुरुष हुए हैं वे सब भी मेरे लिए मंगल करें। फिर सातों रिद्धियों को धारण करने वाले जो मुनिजन हैं वे भी हमारे कल्याण में निमित्त बने। इतनी चर्चा अपन ने कर ली। अब कह रहे हैं कि जितने भी जिनालय हैं, जिनालय दो प्रकार के होते हैं, जिनालय कहो या चैत्यालय कहो। मंदिर शब्द तो बाद में आया है, वास्तव में तो जहाँ जिनबिंब होता उसे जिनालय कहते हैं, या कि जिनबिंब को ही चैत्य कहते हैं और चैत्य जहाँ रहता उसे चैत्यालय बोलते हैं। तो जिनालय, चैत्यालय और फिर मंदिर शब्द जो है जिन मंदिर, ऐसा जोड़ देते हैं। मंदिर तो सामान्य रूप से सभी लोग कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर विशेष रूप से जिनालय और चैत्यालय ऐसा, या जिन मंदिर, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए और दूसरे जो अनादिकाल से शाश्वत हैं। और जो अनादिकाल से हैं वे अकृत्रिम जिनालय कहलाते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं वे सब कृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं। कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों के अपन अर्घ भी चढ़ाते हैं, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसकी मैं लिस्ट नहीं ला पाया, एक अच्छी वो निकली है लिस्ट जिसमें सभी की संख्या अलग अलग दी हुई है, एक चार्ट है। खैर मैं फिर बता दूंगा इसमें, अभी तो सिर्फ इनके संख्या नहीं है, अभी तो सामान्य रूप से मंगल की कामना कर रहे हैं। ज्योतिर व्यंतर भावना मर ग्रहे, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव और भवनवासी देव, और अमर का मतलब है वैमानिक देव, चारों आ गए इसमें। ज्योतिर व्यंतर भावना अमर, इन सब में, इन सब के आवासों में ये चारों प्रकार के देव हैं। इन चारों निकायों के देवों के जो निवास स्थान हैं उनमें जिनालय बने हैं, अकृत्रिम जिनालय बने हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। और विशेषता ये है कि एक एक जिनालय में 108 108 प्रतिमाएं होती हैं, हाँ, और एक एक प्रतिमा 500 धनुष वाली अवगाहना की है। 500 धनुष मतलब एक धनुष कितना होता, चार हाथ का एक धनुष होता है, और एक हाथ लगभग 1.5 फीट का मान लो तो 6 फीट के मायने हो गए एक धनुष। ऐसे 500 धनुष मतलब 30,000 फीट, इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना की 108 प्रतिमाएं एक एक जिनालय में होती हैं, और ये असंख्यात हैं ज्योतिर्मंडल में तो असंख्यात जिनालय। इस तरह से चारों निकाय के देवों के यहाँ, और देवों के लिए नियम है कि जैसे ही वो उत्पन्न होते हैं और सबसे पहले स्नान करके आभूषण धारण करके सबसे जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए जाएंगे ही। अगर मिथ्या दृष्टि है तो भी जाएगा कुल देवता मान करके, सम्यक दृष्टि है तो सच्चे देव मान करके और उनकी पूजा करेंगे। और कह रहे हैं जंबू शालमली चैत्य शाखीसु चथा दक्षार रूप्या दृशु, ये सब जो है मेरु और कुलाचल इत्यादि हैं। तो जितने भी मेरु हैं, पांचों मेरु, कुलाचल, जंबू वृक्ष और सालमली वृक्ष, इन पर जो है ये चैत वृक्ष कहलाते हैं, इन पर भी जिनालय हैं। वक्षार और विजयार्थ की श्रेणियों में, विजयार्थ पर्वत पर और इश्वाकार पर्वत पर कुंडल गिरा ऊंचा, नंदीश्वर दीप और मानुषोत्तर पर्वत, इसी के साथ में इन्होंने रुचिकवर पर्वत भी दिया है। यहाँ जहाँ पर भी अकृत्रिम जिनालय हैं वे सब जो है हमारे पापों का क्षय करें, हमारे लिए मंगलकारी होवें। इस तरह से अपन ने सभी अकृत्रिम जिनालयों के लिए भी अपने मंगल में, अगर अपन चाहें तो इनको अपने मंगल में निमित्त बना सकते हैं, कहना ये चाह रहे हैं निमित्त बने, ऐसी भावना भा रहे हैं अपन। फिर अब देखो 24 तीर्थंकर जहाँ जहाँ से मोक्ष गए हैं वे सब निर्वाण की स्थलियाँ हैं, वे भी हमारे लिए कल्याण में निमित्त बने, हमारा मंगल करें। वैसे तो सभी तीर्थंकर सम्मेत शिखर से ही मोक्ष जाते हैं, अयोध्या में पैदा होते हैं, लेकिन इस बार हुंडाओ सर्पनी की वजह से 20 तीर्थंकर शिखर जी से गए, बाकी 4 तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से गए। तो ऐसे निर्वाण क्षेत्र कितने हो गए, 5 हो गए। एक तो संवित शिखर है ही और चार और भगवान अलग अलग चले गए तो पांच हो गए विशेष रूप से तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल। सामान्य जीवों के निर्वाण स्थल अलग हैं और तीर्थंकरों के निर्वाण स्थल तो विशेष रूप से पांच हैं। उन सब के लिए भी यहाँ पर अपने मंगल में निमित्त मान रहे हैं। कैलाशे, कैलाश पर्वत किसकी निर्वाण भूमि है? ऋषभदेव भगवान की। वृषभस्य लिखा ही हुआ है, कैलाशे वृषभस्य। निर्वृति मही अर्थात निर्वाण की भूमि। और वीरस्य पावापुरी, महावीर भगवान की निर्वाण भूमि पावापुरी है। चंपायाम वसुपूज सज्जने, वासुपूज भगवान चंपापुरी से निर्वाण को प्राप्त हुए। और संवेद शैले अर्हताम शेषाणाम अपि, और शेष जो हैं वे सब 20 तीर्थंकर संवेद शिखर से गए। और ऊर्जयंत शिखरे नैमीश्वरस्य अर्हतो, और नैमिनाथ भगवान तो ऊर्जयंत पर्वत, उसको गिरनार भी बोलते हैं है? तो ऐसे गिरनार पर्वत से नैमिनाथ भगवान गए, ठीक है ना। और शेष तीर्थंकर 20 जो है संवेद शिखर से गए। क्या कह रहे हैं? निर्वाणा वनया अवनया, अवनी, अवनी मतलब धरती भूमि। तो ये निर्वाण की अवनि है अर्थात निर्वाण की भूमि है। प्रसिद्ध विभव, इनका वैभव तो प्रसिद्ध है, अतिशय और वैभव प्रसिद्ध है। ये सब हमारे लिए निर्वाण की भूमियां भी मंगलकारी हों, हमारे कल्याण करने में निमित्त बने। अपन इनका भी अर्घ चढ़ाते हैं रोज। देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्थापना और नाम, ये छह प्रकार की पूजा होती, उसमें से ये क्षेत्र की पूजा है, काल की पूजा है। जैसे अपन त्रयोदशी के दिन भगवान को क्या हुआ, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को निर्वाण, तो उसका भी अर्घ चढ़ाते। पांचों कल्याणक की तिथियों का अर्घ चढ़ाते ना, वो सब काल पूजा है। और ये जो विभिन्न भूमियों का नाम बोलकर चढ़ाते वो सब कहलाएगी क्षेत्र पूजा। ये भी आवश्यक है, रोज करते हैं अपन। दो और रह गए, दोनों कर दें क्या? कर देते हैं है? हाँ, यो अब इतना और रहा कि जो तीर्थंकर हैं उनके पांचों कल्याणक कल्याणकारी ही हैं। देखा जाए उनका नाम ही कल्याणक है, अर्थात जिससे स्वयं का भी कल्याण हो और प्राणी मात्र का कल्याण हो वो कल्याणक। कल्याणक जो है वो विशिष्ट उत्सव है। भगवान के गर्भ में आते समय भी उत्सव मनाया जाता है, भगवान जन्म लेते हैं तब भी उत्सव मनाया जाता, जब वे दीक्षा लेते हैं तब भी उत्सव मनाया जाता। वो भी कौन? देवों के द्वारा। सबसे पहले देव और फिर बाद में सब मनुष्य भी शामिल होते हैं उसमें। ऐसा नहीं समझना कि मनुष्य नहीं मनाते हैं, देवों के साथ साथ मनुष्य भी शामिल, पर सबसे पहले देव लोग आकर के मनाते हैं। फिर जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तब भी उत्सव मनाया जाता, जब भगवान को निर्वाण हो जाता तब भी उत्सव मनाया जाता। ये पांचों अवसर उनके पांच कल्याणक कहलाते हैं। क्यों है कल्याणकारी? क्योंकि अब फिर से माँ के पेट में आकर के आना नहीं पड़ेगा, जन्म नहीं लेना पड़ेगा दूसरी बार। अब दीक्षा, आखिरी बार दीक्षा ले रहे हैं, केवल ज्ञान और निर्वाण वो तो एक ही बार प्राप्त होता, बार बार थोड़ी प्राप्त होता। तो इसलिए ये स्वयं में भी कल्याणकारी हैं और जीव भी इसके माध्यम से अपना कल्याण करते। तो कह रहे हैं यो गर्भाव सरोत सबो भगवताम, जो गर्भ के अवसर पर भगवान का उत्सव हुआ वो गर्भ कल्याणक भी मेरे लिए कल्याणकारी होवे। बताओ उस गर्भ कल्याणक से अपन को क्या मिलने वाला? कहते ये संदेश मिलता है कि ऐसे जन्म लो जिससे कि फिर बार बार जन्म मरण ना करना पड़े। इसलिए और जन्माभिषेकोत्सव भगवान के जन्म के अवसर पर जो सौधर्मेंद्र के द्वारा पांडु शिला पर ले जाकर के सुमेरु पर्वत पर वहां अभिषेक होता है वो जन्माभिषेक, वो जन्म कल्याणक है। यो जाता है परिनिष्क्रमीण, परिनिष्क्रमण का मतलब ग्रह त्याग कर देना, उसको परिनिष्क्रमण बोलते हैं। अर्थात दीक्षा के लिए भगवान का बन चले जाना, जंगल चले जाना, वो परिनिष्क्रमण है, उसको कहते हैं दीक्षा कल्याणक। यह केवल ज्ञान भाग, और जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो ज्ञान कल्याणक है। और फिर कैवल्यपुरा प्रवेश, जब मोक्ष में प्रवेश हो गया, कैवल्यपुर मतलब मोक्षपुरी, तो मोक्ष जब भगवान का हो गया तब उसकी जो महिमा संपादित है स्वर्गी भी, स्वर्ग के देवों के द्वारा इंद्रों के द्वारा आकर के इन सब पांचों अवसरों पर जो भगवान की महिमा बताई गई है, कल्याणानी चतानी पंच सततम, वे पांचों कल्याणक निरंतर मेरे लिए कल्याणकारी हों अर्थात मेरे मंगल में निमित्त बने। तो अपन पांचों कल्याणकों के भी अर्घ चढ़ाते हैं रोज भगवान के लिए। वो काल पूजा, इत्थम श्री जिन मंगलाष्टकम इदम, इस तरह से यह जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा और अपने मंगल की कामना करने वाला आठ पदों से जो मंगलाष्टक है वह सौभाग्य संपत्करम, वो कैसा है? सौभाग्य और संपत्ति दोनों को देने वाला है, हैं? मांग नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि हम मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे, वो तो मिलेगी। पेड़ के नीचे जाओ तो छाया मांगनी पड़ती क्या कि थोड़ी छाया दे देना, वो तो है ही, आप जाओ घर तो उसके नीचे। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि हम जब भगवान से मंगल की कामना करते हैं तो अपने शुभ परिणामों के द्वारा हमारा मंगल हो ही जाता, भगवान मंगल करें और चाहे नहीं करें, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है, वो अपने आप में लीन रहते हैं। आप उनके माध्यम से अपना कल्याण करो तो करो, कल्याण इसु महोत्सव इसु सुधिया। और जो सुधी लोग, सुधिया मतलब बुद्धिमान, क्या करते हैं, कल्याण इसु महोत्सव इसु, पंच कल्याणक के महोत्सव के अवसर पर, और तीर्थंकरा नाम उषा, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के, और उषा मतलब प्रभात काल, उषा वेला प्रभात काल में, ये श्रणवंती पठंती तैश्च सुजनई, जो सज्जन पुरुष इसके लिए सुनते हैं और पढ़ते हैं, वे किस चीज को प्राप्त करते, कहते धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी आश्रय थे, वे धर्म अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ हैं, इनके साथ साथ वे लक्ष्मी अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, फिर पश्चात निर्वाण लक्ष्मी रपी, यहाँ पर लक्ष्मी के मायने ले लिया अनंत चतुष्ठ है, पहले अरहंत अवस्था में अनंत चतुष्ठय की प्राप्ति हो गई, और फिर बाद में निर्वाण लक्ष्मी अर्थात मोक्ष लक्ष्मी भी उनको प्राप्त हो जाती। इतना बड़ा लालच दे रहे हैं, अब तो जरूर पढ़ना चाहिए इसको। वो कह रहे हैं कि अगर इसको पढ़ोगे और सुनोगे भी अगर, तो भी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो सकती। छोटी मोटी चीज क्या मांगना, जब मांगो तो फिर अच्छे ठाट से मांगो कि पूरा ही पूरा काम हो एक बार में, क्या थोड़ा मोड़ा क्या मांगना, देव तो फिर पूरा ही देव। तो ऐसा मांग लिया अपन, भगवान से मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं, हम आप जैसे बन जावे, हमको भी मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। इस तरह ये अपन ने पूरा मंगलाष्टक हो गया। एक प्रश्न है, आज प्रश्न तो है ही नहीं तो जल्दी खत्म हो जाएगा। इन शब्दों का अर्थ अवश्य इकट्ठे रखे थे क्या, इन शब्दों का अर्थ अवश्य अर्थ सहित बताने का कष्ट करें। निष्प्रह, स्प्रह बोलते हैं इच्छा को, किसको बोलते हैं, इच्छा, अपने भीतर इच्छा जागृत होती वो कहलाती स्प्रह, संस्कृत शब्द है। और निष्प्रह अर्थात जिसके कोई इच्छा नहीं, डिजायरलेस। एक फॉर्मूला बनाया था विनोबा ने, ह्यूमन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू ह्यूमन, ऐसा फॉर्मूला इक्वेशन बना दिया उन्होंने। आदमी में से अगर इच्छाएं निकल जाएं तो वही तो भगवान बन जाएगा, निष्प्रह हो जाए, कोई इच्छा नहीं है संसार की, किसी भी भौतिक सुख की कामना नहीं होना, ये कहलाता है निष्प्रह। और छद्मस्त, छद्मे स्था छद्मस्ता, छद्म के मायने अपने आप, ये टेक्निकल वर्ड है। निष्प्रह शब्द तो संस्कृत की डिक्शनरी मिल जाएगा, लेकिन छद्मस्त शब्द तो जैन डिक्शनरी में ही मिलेगा। छद्म के मायने होता है ज्ञानावरण दर्शनावरण, क्या अर्थ हुआ छद्म के मायने, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। जब जिसके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म लगे हैं वो सब छद्मस्त हैं। छद्मस्त का दूसरा अर्थ भी है संसारस्थ, जो संसार में स्थित हैं। जब तक चार घातिया कर्म लगे हैं तब तक अपन सब संसारी कहलाएंगे, और जैसे ही चार घातिया कर्म नष्ट हुए तो फिर केवली कहलाएंगे, छद्मस्त और केवली। छद्मस्त कहलाते हैं जो संसार में हैं, अर्थात जिनके ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण अभी लगे हुए हैं, छद्मे स्था छद्मस्था, अपन सब छद्मस्त कहलाएंगे। ऐसा सामान्य सुनने में आया होगा आपके, छद्मस्त, तो छद्मस्त मतलब सब संसारी। और अर्थ क्या हुआ, जिनके अभी ज्ञानावरण दर्शनाकरण वर्ण कर्म मौजूद हैं, है? वो तो सब उसी में आ गए। छद्म के मायने विशेष रूप से ज्ञानावरण और दर्शनावरण लिया हुआ जी, है? हाँ, ऐसा अर्थ तो नहीं आया सामान्य, बारहवें गुण स्थान तक जो है सभी छद्मस्त हैं, इसलिए ऐसा भी अर्थ ले लो कि छद्मस्त मतलब अपन कहने लगते ना भैया अब हम अवथोड़ो ज्ञान है, हम छद्मस्त हैं, ऐसा कह देते हैं। छद्मस्त है मतलब हमें थोड़ी केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान जिनको होता है वे सही बात जानते हैं, हम तो छद्मस्त हैं अर्थात अभी हम अज्ञानी हैं। इस अर्थ में भी छद्मस्त का अर्थ ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं समझना, छद्मस्त तो बारहवें गुण स्थान तक के जीव हैं, जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ उसके पहले पहले सब अज्ञानी, एक परिभाषा ये है। अज्ञानी की परिभाषाएं अलग अलग हैं, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे अज्ञानी कहते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है, जिसे सम्यक ज्ञान ना हो उसे अज्ञानी कहते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है अज्ञानी की, जो अपना आत्म कल्याण नहीं करता वो भी अज्ञानी है। और फिर कहते कि केवल ज्ञानी के सामने तो सभी अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी के अर्थ। तो छद्मस्थ के मायने अज्ञानी भी कहो तो कोई हर्जा नहीं, पर छद्मस्थ के मायने ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म भी लगे हुए हैं जिनके। मेटल की चूड़ियां और प्लास्टिक की चूड़ियां, इनको पहनकर आहार दे सकते हैं क्या? देखो भैया, ये जो है, अब आप जैसा करना हो। देखो, अकेले लाख इत्यादि से बचना चाहिए, लाख में बहुत जीव हिंसा होती है। आजकल जो है वो लाख की भी चूड़ियां बनने लगी, तो कम से कम आहार के समय तो अपन उनका उपयोग ना करें, इतना ही। अब वैसे तो सोने के जेवर भी बनते हैं, उनके भीतर भी लाख रहती है, अब क्या करोगे आप, कैसे बचोगे आप? लेकिन कम से कम प्योर जो लाख है उसके लिए, वो तो क्योंकि संपर्क में आ रहा, बार बार छूने में आएगा, तो कम से कम उससे तो बचना चाहिए, और बाकी में तो ठीक है। ये तो प्रश्न का जवाब देना जरूरी है क्या? जिनके स्वर्ग, मतलब क्या बोलते हैं अपन लोग, स्वर्गवास हो गया किसी के परिवार में और माँ अकेली रह गई, तो फिर वो माँ जो है वो श्रृंगार करेगी कि नहीं, ये तो सबको विदित है कि किस बात का श्रृंगार, बिंदी है नहीं, ठीक है। देखो, आप इतनी जल्दी घबरा जाते, मैं प्रश्न का, जबकि मेरे पास प्रश्न आया, आपके पास आता तो आप तो बिल्कुल उस व्यक्ति को पता नहीं क्या कर लेते, क्या पूछ रहे हो तुम। अपन को ऐसा लगने लगता जैसे अपन ही अज्ञानी है और तो सब अज्ञानी है एकदम, लेकिन पूछने वाले ने पूछा, उसने कहीं देखा होगा। कई जगह पर ऐसा होता है कि मरण हो जाने के बाद भी और श्रृंगार की सामग्री का त्याग नहीं करते, थोड़ा बहुत तो पहने ही रहते हैं, हाथ में चूड़ियां पहने रहते हैं। वो पूछ रहे हैं क्या नाक में पहनेंगे, कान में, या कि बिंदी लगा सकते कि नहीं। तो भैया, जहां जैसी मान्यता हो वैसा, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये तो सामाजिक मान्यता है, समाज में जैसा प्रचलन है वैसा कर लेना चाहिए, जवाब तो ये देना पड़ेगा, अकेले टाला थोड़ी जा सकता। आज यही चीज है, छोटे बच्चे, मैंने देख लिया बच्चे खूब सारी बातें पूछना चाहते हैं और पूछते भी हैं घर में परिवारजनों से, लेकिन उनके पास या तो समय नहीं है बताने का, और या फिर उनको खुद ही नहीं मालूम क्या बताएं, तो डांट डपट के, अरे चलो क्या पूछते हो तुम, कुछ आता जाता है ही नहीं। वो पूछना चाहते धर्म की बातें और अपन खुद उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते नहीं, या तो समय नहीं है कि खुद अपन को ज्ञान नहीं है। पर बताना चाहिए सारी चीजें, इन चीजों के बारे में भी जान, क्यों आप कोई पूछ ले आपसे कि क्यों ऐसा, पुरुष को भी ऐसा करना चाहिए, फिर हमारी मान नहीं रही तो पिता को भी ऐसा करना चाहिए कि दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, फिर शेविंग नहीं करवाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, क्या करना, फिर कुछ ऐसा करना चाहिए, क्या कारण क्या है? देखना, पिता मर गए हैं तो माँ कुछ भी नहीं करेगी, बेटा पूछ सकता है कि पिता नहीं रहे हैं तो माँ तो जो है कुछ नहीं करे, टिपकी भी नहीं लगाए और फलाना नहीं करे, और अगर मां नहीं रहे और पिताजी, तो भी दूसरी शादी कर लेंगे, देखो तो संसार, इसके लिए छूट है। तो ये प्रश्न कर सकते, अब आपके पास क्या उत्तर है इसको? यही उत्तर देंगे भैया, समाज ने जैसी व्यवस्था बनाई है वैसा है, समाज ने कोई सोच विचार की बनाई होगी उस तरह की व्यवस्था, और क्या उत्तर दे सकते हैं आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे नहीं सकते। आप टाल मटूल कर सकते हैं इन प्रश्नों के जवाबों को देने में, लेकिन आपके पास कोई बिल्कुल लॉजिकल साइंटिफिक कोई इसका जवाब नहीं है इन चीजों का, बस ये मान्यताएं हैं, और मान्यताएं कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचाती, ये ध्यान रखना। मान्यता और सच्चाई में बहुत फर्क होता है, जैसे कि कैसे फर्क होता, जैसे कि मान्यता है कि मैं पुरुष हूं इसलिए घर गृहस्थी के काम नहीं कर सकता, सच्चाई क्या है, क्या मैं घर गृहस्थी का काम करने में सक्षम नहीं हूं क्या? सच्चाई तो है कि मैं सक्षम हूं, लेकिन मान्यता क्या है, अरे भैया तुम रोटी नहीं बना सकते, क्या बनाते नहीं बनती, सच्चाई तो है कि बनाते बनती है, लेकिन मान्यता है कि आप नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे तो ये तो काम जो है दूसरों का है, ऐसा मान्यता और सच्चाई में बहुत फर्क रहता है। जो लोग मान्यता, जो जिस समाज में मान्यताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है सच्चाई की अपेक्षा, उस समाज का कभी विकास नहीं होता, ये ध्यान रखना।
कमंडल का रंग काला क्यों होता? क्योंकि मुनि हाँ ठीक है, मुनि महाराज जी ने कमंडल का रंग, उनके कमंडल का रंग काला इसलिए है क्योंकि अब काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ने वाला। काले रंग में सब रंग समा गए, सारी रंगीनी खो गई उनकी, तब जाकर के वो यहाँ पर आ पाए हैं। ये प्रतीक है उस बात का, काले रंग का। छोटे बच्चे आहार दे सकते हैं क्या? ले लेते हैं, हम छोटे बच्चों से भी ले लेते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलो, पिताजी के हाथ में हाथ लगा लो और दे लो। तुम इतने ऊंचे नहीं उठ पाओगे कि हमें दे पाओ, इसलिए दे लो। अभी से जो है संस्कार पढ़ेंगे भैया, आगे जा करके इन्हीं को तो करना है सब, और कौन करने वाला? आपको अपने पिताजी से मिला था तो आपने निभाई, अब आप इनको सिखा के जाएंगे, सुई आगे तक चलाएंगे, पंचम काल के अंत तक चलना है। शावक शाविकाएं ऐसे ही तो रहेंगे, संख्या कम हो जाएगी। कितने प्रतिशत बच्चे हैं अच्छा बताओ? पूरे पूरे जयपुर में 1% बच्चे होंगे जिनको की आहार देने की रुचि होगी। 1% देख लो आप, जिनको थोड़ी बहुत फुर्सत मिलेगी, नहीं तो वे अपनी मस्ती और वे अपने टेलीविजन और वे अपनी
अप्रोच लगाए, मतलब डायरेक्ट उन्होंने सोचा कि ऐसे डायरेक्ट लगा ऐसे चिट्ठी। हम आपको इतना ही कहते हैं, हमसे लिखा हुआ भी आवश्यक नहीं है। आप इतने ही जाकर के कह दें कि मैं जयपुर से आया हूँ, महाराज जी की ओर से आपको नमस्ते, बस फिर देखिएगा आप जो चाहते हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास। अभी तक जो लोग गए हैं उन्होंने सिर्फ इतना ही जाकर के कहा कि वहां से आए हैं, महाराज ने झूठी भी कह दिया जबकि हमसे बिना मिले चले गए, और बाद में उन्होंने आगे बताया कि हमने तो इतने कह दिया था, आप क्या करें, वहां कोई जाने नहीं दे रहा था, तो हमने कहा हम जयपुर से आए और महाराज जी के पास से आए, उनने नमोस्तु कहलवाया महाराज को, जाने दो भीतर, तो जाने दिया उनको भीतर, तो इतने में भी काम चल जाएगा। और फिर देखो अगर वाकई में आपके अंदर और ऐसी रुचि और श्रद्धा है तो जाकर के नियम लेने का निवेदन करना चाहिए, तब खूब प्रेम से आचार्य महाराज और आपको नियम देंगे। बात भी हो सकती है कि महाराज हमको कोई छोटा मोटा नियम लेना है, या हम रात्रि भोजन छोड़ना चाहते हैं, या हम और भी कोई माला फेरना चाहते हैं, आप नियम दे दें, आशीर्वाद दे दें, बड़े प्रेम से। ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर करेंगे, असल में इतने सारे लोग जाते हैं, किस किस के किस किस को वो ध्यान देंगे, पर जो व्यक्ति अपनी पूरी रुचि और भावना रखता है उनके पास जाने के लिए किसी अप्रोच की जरूरत नहीं है, मैं ये भी कहना चाहती हूँ। नहीं तो आपके मन में आ जाए कि भैया ये तो बड़े साहब हैं, तो एक तो पहले से चिट्ठी लिखवा करके ले जाओ, फिर वहां देना पड़ेगा कि ये मिलना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट मिलेगा वहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सहज भाव से जाएं, आपकी श्रद्धा जो है वो काम आसान कर देगी। किसी के यहाँ पर मरण में जब हम उसमें जाते हैं अर्थी में साथ में, तो फिर कितनी देर सूतक लगेगा? उस दिन का पूरा सूतक लगेगा, हाँ, घंटे वंटे का मामला नहीं है, उस दिन का, रात निकल गई सूतक खत्म। जैसे शाम को भी कोई व्यक्ति 4 बजे लकड़ी में शामिल हुआ और मरघट तक गया, तो उस दिन पूरी रात भर का लगेगा, दूसरे दिन सवेरे से उठकर नहा धोकर के पूजा पाठ करो। ऐसा घंटे नहीं गिनना कि 4 बजे से अब अगले दिन 4 बजे तक 24 घंटे, ऐसा नहीं। जिसके बीच में रात, उसकी क्या बात, खत्म है। हाँ, नहा धो करके कर लो। अच्छा, माला, हाँ माला फेरने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनालय जाएंगे तो नहा धो करके ही जाएंगे जिनालय। हाँ वो तो ठीक है, सामायिक क्यों नहीं करेंगे, नवोद्वार मंत्र पढ़ेंगे, सामायिक करेंगे, इसमें बस इतना ही है कि मंदिर जाने के लिए उतनी देर, मतलब शाम को अगर 4-5 बजे भी शामिल हुए हैं तो दूसरे दिन तक आप नहीं जाएंगे फिर, और दूसरे दिन सवेरे नहा धो करके मंदिर चले जा सकते हैं। जो जा रहा उसके लिए, जो शामिल हुआ हर घर तक गए हैं, इसलिए अर्थी में एक दिन का ही सूतक है उसमें। नहा धो के मंदिर जाते हैं, ठीक है, हमें उसमें भी, हाँ ठीक है, सामान्य व्यक्ति के लिए कोई बोल। भरतेश्वर स्वामी और श्री मंदर स्वामी की मूर्तियां क्या पूजनीय हैं? कृपया स्पष्ट करें। भैया अपन को वीतरागता पूजनीय है, वैसे तो जहां के 24 तीर्थंकर हैं वहीं पर मूर्ति बनाई जाएगी, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर की मूर्ति भरत क्षेत्र में नहीं बनती, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर की विदेश क्षेत्र में नहीं बनती, ऐसा स्थापना का नियम है, प्रतिष्ठा शास्त्र का। लेकिन बाद बाद को भरत बाहुबली की भी मूर्ति बनने लगी और श्रीमंदर भगवान की भी बनने लगी। श्रीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र के हैं और बाहुबली और भरत ये तो तीर्थंकर है नहीं, मूर्तियां तो सिर्फ तीर्थंकर की बनती, पर फिर भी हमने इसको स्वीकार कर लिया। भरत की भी मूर्ति स्वीकार कर ली, बाहुबली भगवान की भी कर ली और श्रीमंदर भगवान की भी कर ली, क्योंकि हम तो वीतरागता देख रहे हैं, मूर्ति तो वीतरागी है। अब उसमें चिन्ह का कोई भी बना दो आप, सो क्या फर्क पड़ने वाला उससे अपन को, इसलिए इनको पूजनी मानने में कोई वैसे हर्जा नहीं। क्या हुआ? अब भैया हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, ने हमसे जो लड़ाई होता है, हम तो इतने ही जानते हैं कि 24 तीर्थंकर में संतुष्ट रहो सो पर्याप्त है, उतने में भी काम चल जाएगा। और कहीं अगर भरत जी की मूर्ति बनी है और आपका मन हुए बीत रात तक दिखे सो प्रणाम कर लो बाहुबली भगवान को, उपद्रव में नहीं पड़ो, नहीं तो ध्यान एक दिन रामचंद्र जी की बना के धर लो और फिर बाद में बेबाहर से आवे और केवे का जाए रामचंद्र जी की, मतलब हम आई आए पहनाओ कपड़ा, उपद्रव में करो। है तो बहुत अच्छी बात कि हाँ रामचंद्र जी मोक्ष गए थे, लेकिन रामचंद्र जी की मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति अपन नहीं बनाएंगे। हाँ, इसलिए उसमें दिमाग लगाओगे तो ऐसा ही होएगा। आपका चल गया दिमाग कि जब इनकी बना सकते हैं तो उनकी भी बना लो। मैंने 24 तीर्थंकर से मन नहीं भरा ऐसा, 24 में हम तो एक में काम चलाओ चाह रहे, 24 में नहीं चल रहा उनको काम। बताओ उनके और बना लो, रामचंद्र जी की बना लो, लड़ने का उपाय है और कुछ नहीं। क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? देखो भाई, पुरुषार्थ इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी कार्य होता है वो दो निमित्तों से हो, दो कारणों से होता है, अंतरंग कारण और बाह्य कारण। इसलिए वस्तु में परिणमन की योग्यता है, लेकिन उस योग्यता को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ, निमित्त और काल, ये सब चीजें आवश्यक हैं, इसलिए इनका भी उसमें हाथ रहता है। जैसे कि कुंभकार ये अहंकार करे कि घड़ा उसने बनाया है तो कहते अहंकार मत करो, मिट्टी के बिना तुम ऐसा हाथ करो देखें घड़ा बनता कि नहीं, बनता है क्या, तो मिट्टी के बिना नहीं बनेगा। और मिट्टी अहंकार करे कि देखा मेरे बिना घड़ा नहीं बनेगा तो कहते तुम तो पड़ी थी वहां पर रास्ते के किनारे, अगर तुम्हें कोई कुंभकार उठा करके और पानी मिला करके और गीला ना करे और उसको कोई शेप ना दे तो तुम घड़ा कैसे बनोगे। इसलिए दोनों आवश्यक हैं, वो योग्यता उपादान भी आवश्यक है, निमित्त भी आवश्यक है, जो कार्य जिस समय होना है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी तो उसके साथ में होना आवश्यक है, बाह्य कारण भी और अंतरंग कारण भी मिलना, हम तो इतने ही जानते हैं, जिससे कि हमारे अंदर अहंकार ना आवे। कारी हो जाने पर कर्तापने का भाव आ जाता है तो विचार करना कि अरे वस्तु का परिणमन ही ऐसा है, होनहार ही ऐसी है, मैं कौन होता हूं ऐसा अहंकार करने वाला, और दूसरी तरफ कार्य अपने मन का नहीं होता तो दीनता आ जाती, संक्लेश होता है, तो फौरन विचार करना अरे वस्तु का परिणमन ऐसा होना नहीं होगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार क्यों वस्तु का परिणमन करवाना चाहता हूं, मेरी ये इच्छा व्यर्थ है, ऐसा विचार करके समता भाव धारण करना, वास्तव में उद्देश्य तो यही है। उपदेश इसीलिए दिया गया था कि जिससे हमारे अंदर अहंकार और संक्लेश ना होवे, इतना ही है उसमें। आहारचर्या के लिए पहले बड़े महाराज जाते हैं फिर छोटे जाते हैं, तो कभी को अब छोटे महाराज पहले चले जाएं और बड़े महाराज बाद में, तो ऐसे जा सकते हैं क्या बताओ? देखो भैया, छोटे बड़े तो ये व्यवहार है, वास्तव में तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, मुनि हैं, 28 मूल उनका पालन वे कर रहे हैं, सो हम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं जितने मुनि महाराज हैं, लेकिन व्यवहार भी आवश्यक है। आगम में लिखा है प्रवचन सार जी में कि अपने से एक क्षण भी पहले दीक्षित के प्रति विनय होना ही मुनिपना है। इसलिए एक क्षण पहले, एक दो दिन नहीं, एक क्षण, अगर तीन लोगों की एक साथ दीक्षा हुई है तो सबसे पहले जिस पे संस्कार हुए हैं वो बड़े हैं, आहारचर्या के लिए उन्हें आगे कर देना अपने आप, फिर उसके बाद दूसरे नंबर जिस पर हुई है वो जाएंगे, तीसरे जिस पर हुई वो जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने यह विधि समाचार की, ये मुनि जनों का आपस का समाचार है, अर्थात आपस की कुशल क्षेम या आपस की विनय जिसको कहें, तो आपसी विनय है ये कि जो दीक्षा में ज्येष्ठ हैं वही वय में ज्येष्ठ है वो अलग चीज है, लेकिन जो दीक्षा में ज्येष्ठ है उन्हें ही ज्येष्ठ मान करके और आगे उठने के लिए कहा जाता है, बाकी कोई वो नहीं है। अब मान लो हम इतने से गए और जो चक्कर लगा के इतने से आ गए, जब तक महाराज निकले इसलिए हमसे आगे पहुंच गए, हम उनके पीछे पीछे चले गए, अब का भाव, क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। इसलिए उसमें कोई राग द्वेष का काम नहीं है, ये तो सिर्फ एक विनय का काम। आपको जयपुर में सबसे अच्छा मंदिर कौन सा लगा? सब कौन सा अच्छा लगा? तो सब, सब मंदिर अच्छे लगे, भगवान सब अच्छे हैं, कोई भी मंदिर अच्छा और कोई भी मंदिर बुरा ऐसा नहीं होता भैया, नहीं तो आप हमें भी राग द्वेष में डाल दो। मन लगना अलग बात है कि कहां मन लगता है, हैं तो सब अच्छे, जैसे सब वेदियां अच्छी हैं लेकिन किसी वेदी पर हमारा मन लगता है तो विशेष मन लगता है, सब महाराज अच्छे हैं लेकिन किसी महाराज के पास हमारा मन लगता है तो इसमें क्या बात हो गई। हाँ, इतने सारे आचार्य हैं, हमारे हमारे मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं आता, आचार्य महाराज के प्रति हमारी विशेष रूप से श्रद्धा जागृत होती, तो अब इसमें कोई दोष थोड़ी है, इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है कि आप ये समझो सब 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 अच्छे हैं लेकिन मेरे लिए जिससे मेरा कल्याण हो रहा है वही मैं अपने लिए श्रेष्ठ मानूंगा, इस तरह इसमें भी करना चाहिए। आचार्य महाराज दीक्षा के बाद जो नाम रखते हैं उसमें कुछ रहस्य होता होगा, कोई घटना छिपी रहती होगी। हाँ, छिपी रहती है, जो ज्यादा गुस्सा करते उनका नाम क्षमा सागर रख दिया। हाँ, बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे पहले, तो अपने आप ठीक हो जाएगा मामला, शायद ऐसा हो सकता है, हम तो सोचते हैं शायद ऐसे ही होता होगा, लेकिन आचार्य महाराज ने हमने पूछा था कि आप कैसे रखते हैं नाम, तो कहते वो तो उस जीव का जैसा भी होगा। पहले आचार्य श्री ने सब ग्रंथों के नाम पर, पहले समय सार जी है तो समय सागर जी नाम रख, फिर योग सार ग्रंथ है तो योग सागर जी रख दिया, नियम सार ग्रंथ है तो नियम सागर जी रख दिया, ऐसे नाम रख दिए। फिर बाद में हम लोगों की दीक्षा हुई तो फिर 10 धर्मों के आधार पर, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव है, अब सत्य सागर तो नहीं रखेंगे तो संयम सागर, तप सागर तो बाद में रखा है अभी, उसके बाद भी तो अब अकिंचन सागर ब्रह्मचरी सागर नहीं बनता, कहने में भी नहीं आएगा, त्याग सागर नहीं बनेगा, तो 10 में से जितने ठीक लगे उतने वो रख दिए। फिर उसके बाद एक से नाम, पहला अक्षर एक सा रखने के लिए और भी ढूंढ लेते हैं, इस तरह से रख देते, बाकी कोई ऐसा विशेष मतलब उसके पीछे वो नहीं है कि कोई गुणों की अपेक्षा से या वैसा हो, उनके रखने का पूछा था एक बार, ना कोई उसके पीछे कोई ऐसी घटना रहती है जो उनके मन में उस समय आ जाता। सबसे ये तो मुनि महाराज की दीक्षाएं तो कमती हैं, माता जी के नाम रखना पड़ते तब तो हम लोग बड़े चकित हो जाते हैं, और आचार्य श्री को इतनी माता जी, आरिका माता जी हैं 130, सबके नाम सबके मालूम, सबको नाम से पहचानते हो कि ये इनका नाम ये, अपन के सामने से अगर 10 माता जी आ जाती तो हम भूल जाते कि इन माता जी का क्या नाम इनका क्या नाम। वो तो ऐसा है जैसे कि एक माँ और पिता को अपने जुड़वा बेटों के भी अलग अलग पहचान होती है, उन्हें और किसी को नहीं होती है, इसी तरह उनको भी इतने सारे नाम हैं और सबके बारे में हम लोग कई बार आश्चर्य करते हैं कैसे रखे होंगे, आ से नाम रखे, 24 नाम आ से ढूंढे उन्होंने, कैसे ढूंढे, और सब धर्म से युक्त भी हैं, उनका कोई ना कोई धार्मिक अर्थ भी निकलता ऐसे करके। तो ये आचार्य भगवंतों का काम है भैया, इसलिए तो वो आचार्य कहलाते हैं कि वो ये सब चीजें अच्छे से जानते हैं। क्या हमें महाराज की तस्वीर के सामने द्रव चढ़ाना चाहिए? द्रव चढ़ाने का नहीं है अपने यहां पर, क्योंकि अष्ट द्रव से पूजा तो जो प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है उसी के सामने होना चाहिए, बाकी कोई लोग जो है आरती वगैरह कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, वो अलग बात है, पर पूजा नहीं करनी चाहिए अपने यहां पर। तो मंगल द्रव से अष्ट द्रव से पूजा तो प्रतिष्ठित प्रतिमा की होती है। हमाला फिरते हैं, जाप करते हैं, आरती उतार लेते हैं, अब घर में जिसके यहाँ मंदिर नहीं है दूर है तो घर में ही जिनवाणी और रख लेना चाहिए। हमने एक बार बताया था ना कि फोटो रखी अगर मान लो तो फोटो के सामने आरती उतारते हो, अब बंद तो कर नहीं सकते, एक जिनवाणी और रख लो तो कम से कम दोष नहीं लगेगा, जिनवाणी और फोटो दोनों वितरागता की आरती हो गई, इस तरह से काम चलाने के लिए। क्या चीज क्या रहेगा? एक भैंस तो उसके बारे में हम क्या कहें बताओ, सुबह भी बात आई थी तो सुबह बड़ा मुझे भी विकल्प हुआ। हाँ, अब भैया आचार्य श्री ने तो हम लोगों को यही बताया है कि सीढ़ी पर अगर अंधेरा है और कोई पहले से रोशनी का प्रबंध कर ले वे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर रोशनी का प्रबंध नहीं तो अंधेरे में हम कैसे जाएंगे। इसलिए जो है आप अगर रोशनी का प्रबंध करते हैं, कोई लोग लालटेन जला के रख लेते हैं, कोई गैस जला देते हैं, कोई लाइट जला देते हैं, माने किसी भी तरह से वहां पर रोशनी का उपाय हो जावे।
लेकिन बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 25-50 ठो रोशनी उसी के लिए स्पेशली लगा दी तो वो भी दोष हो गया। अति भी नहीं होनी चाहिए कि एकदम ही रोशनी रोशनी कर दी महाराज के लिए, अब रोशनी अलग से करना पड़ी। नहीं, सहज रूप से और रास्ते में जैसे आप चलते हो तो आप अपने चढ़ने के लिए रोशनी जलाते कि नहीं जलाते, अंधेरे में कैसे चढ़ेंगे, तो उस तरह से अंधेरे को दूर करने के लिए कर लिया। इतना ही है, इससे ज्यादा तो नहीं। महाराज तो किसी और बात से क्यों लौटे पता नहीं लगा मुझे, मुझे तो लोगों ने यही बताया कि बहुत ज्यादा लाइट थी इसलिए लौट आए।
अरे सामने को लाइट जला,
हाँ सामने लाइट जला दी वो कह रहे हैं, तो सामने अगर लाइट जला दी होगी तो हाँ उसको जला दी होगी। हाँ तो देखो एक चीज और, मान लो रास्ते में लाइट पहले से जली है तो कोई बात नहीं, हमारे सामने जलाओगे या बुझाओगे तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा आदम का आदेश है कि अपने सामने, अगर इसी तरह कोई व्यक्ति भीतर जाकर के भी अपने सामने गैस जला देवे या कि बुझा देवे तो भी लौट आएंगे, अग्नि जलती भी देख करके भी लौट आएंगे इसी तरह।
हाँ
भोजनालय
में,
भोजनालय मतलब
माने चौका,
चौका भोजनालय में तो उनको बना
भोजनालय हमारा
चौका में रसोई में
उते अगर सब घर एक आदमी को छींचे भाईगा तो आदमी जाकर प्रवेश करें
तो ठीक है,
दूसरे से टकरा है
ठीक है,
भोजन छोड़ने
ठीक नहीं है। अगर दिखाई पड़ जावे अपन को कि ये व्यक्ति, अगर दिखाई पड़ जावे हमारी बात पे गौर करना, अगर हमें दिखाई पड़ गया जैसे कि अपन कहते ना कि भैया सामने सामने देखी हुई मक्खी को ही खाता है ना, अगर दिखाई पड़ जावे कि ये व्यक्ति अभी उनसे सबसे छू करके आ रहा है और चौके में आ गया तो फिर हम चाहे तो हम अंतराय कर सकते हैं, तब तो फिर अशुद्धि हो गई, अशुद्धि हो गई।
जब तक हमने आहार लाओ जब तक देनी पड़ी छू लाए और जो सब खून बुला इकट्ठी कर रहे
तो फिर अंतराय वो तो मानना ही पड़ेगा। अगर जो है अशुद्धि वाले लोग भीतर आ जाएंगे तो अंतराय मानना पड़ेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तो कल के दिन आप ही कहोगे, कहते भी हैं लोग कि महाराज तो सब चला है, हमने सुन लिया वैसे देखो तो महाराज, मैंने संसार जो है इस तरह का है कि सबसे दया करके तो सबसे ले लो, सो भी उसमें भी नहीं है जस में थराई, जैसा बुंदेलखंड में कहते कि जस में थराई चाहे कछू करो, तो सबसे ले लो तब भी कुछ लोगों के मुंह से कहते सुन लिया महाराज को तो सब चलत है, चाहे जैसे छुआ था चाहे जैसे देव जात है, महाराज को तो कछू है नहीं, मन शुद्धि वचन शुद्धि ऐसा भी कहने वाले लोग हैं देखना। और अगर अंतराय करके आ जाए, अरे महाराज बड़े कड़े हैं तुम लक्षी कहते सो अंतराय कर लो, मैंने दोनों तरफ का मामला है भैया, शिथिलता उतनी ही है जितनी की शक्य अनुष्ठान है, अपन को जितना शक्य है उतनी शुद्धि तो करनी ही चाहिए, ज्यादा शिथिलता नहीं करनी चाहिए।
मतलब जो है कि महाराज के पास तुम कहो लेकिन वो के पैरा हम अपने हिसाब से चलते हैं
ठीक,
ऐसा नहीं है,
शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए।
नेचरत होते तो हम अपनाते भी नहीं आचार्य श्री, हम इतने कछु दौड़ी करते हैं, हम अपनी
कोई
से चलती हैं,
नहीं तो वो तो ठीक है लेकिन
ये क्या बात है कि महाराज के पास तुम बोल लेके पहुंचो, ये कुछ बात है
रिपोर्ट हो कोई नहीं करी रिपोर्ट रिपोर्ट कर रहे देखो शुद्धि का विवेक तो रखना चाहिए। हम तो ये कहेंगे बस संक्षेप में यही कहेंगे, इस चर्चा को और न बढ़ा करके शुद्धि का विवेक रखना चाहिए, सबको रखना है ना। अगर अपन को ऐसा लग रहा है कि अपन छू गए हैं तो फिर अपन को उस दिन आहारचर्या में से विड्रॉ कर लेना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए और दूर खड़े होकर के देखना चाहिए, काय को आकुलता कर रहे हैं संकेत करवाओ, इसलिए सावधानी रखें। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से दुखी जीवां पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे दीन
इस जीवन में औरों का उपकार करूं
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।